अब तर्क शब्द का व्याख्यान यहाँ पर किया जाएगा। आप जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसका भी नाम है तर्क भाषा। इस तर्क भाषा में तर्क का जो है क्या अर्थ है, इसको मैं भूमिका के समय में बहुत बताया था। यहाँ तर्क भाषा के अंतर्गत जो तर्क शब्द है वह है न्याय। तर्क का अर्थ होता है यहाँ पर न्याय। लेकिन अभी जिस तर्क की हम चर्चा करेंगे ये तर्क कुछ अलग है। इसको भी तर्क भाषा वाले तर्क के अंतर्गत रख सकते हैं, लेकिन तर्क भाषा नाम का जो तर्क है वो थोड़ा व्यापक है। और यहाँ जो तर्क की बात हो रही है वो अनुमान के प्रसंग में केवल हो रही है। तो इस चलिए इसका लक्षण देखते हैं। लेकिन परीक्षा में अगर पूछता है कि तर्क का लक्षण बताइए, तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वैसी को वहाँ पर बताना है। कहते हैं कि तर्क है अनिष्ट प्रसंग। अनिष्ट प्रसंग का नाम जो है वह तर्क है। अनिष्ट प्रसंग क्या है? इष्ट प्रसंग और अनिष्ट प्रसंग। जो प्रसंग इष्ट हो, जो प्रसंग हम चाहते हो कहाँ ऐसा हो वह हुआ इष्ट प्रसंग, और जो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा न हो वह हो गया अनिष्ट प्रसंग। तो अनिष्ट प्रसंग का नाम ही है तर्क। स्वच माने वह जो तर्क है वह सिद्ध व्याप्तिकयो हो धर्मयो हो व्याप्य अंगीकारेण अनिष्ट व्यापक प्रसंजन रूपा। वह तर्क कैसा होता है? तो कहते हैं कि सिद्ध व्याप्तिकयो धर्मयो, दो धर्म है जिन दो धर्मों में व्याप्ति जो है सिद्ध है माने निश्चित है। तो निश्चित व्याप्ति वाले जो दो धर्म हैं उन दो धर्मों में से व्याप्य अंगीकारे न, अब जो वो जो दो धर्म होंगे सिद्ध व्याप्ति वाले दो धर्म, उसमें क्या होगा? एक होगा व्यापक धर्म, एक होगा व्याप्य धर्म। तो उसमें से व्याप्य अंगीकारे न, व्याप्य धर्म का अंगीकार करेंगे माने व्याप्य धर्म को स्वीकार करेंगे। और व्याप्य धर्म को स्वीकार करने से क्या होगा? अनिष्ट व्यापक प्रसंजन रूप। फिर जो है वहाँ पर अनिष्ट व्यापक का प्रसंजन होगा, अनिष्ट व्यापक धर्म की वहाँ पर प्रसक्ति होगी। इस तरह से व्याप्य धर्म के अंगीकार करने से व्यापक धर्म की जो प्रसक्ति होती है, व्यापक धर्म की जो अनिष्ट आपत्ति होती है, उसी अनिष्ट आपत्ति का नाम है तर्क। अब उदाहरण में इसको बताएंगे। यथा यदि अत्र घटः अभविष्यत् तर्हि भूतलम् इव अद्रक्षत्। यदि यहाँ घड़ा होता तो भूतलम इव अध्यक्षत, तो भूतल की तरह वह दिखाई देता। ये क्या है? ये तर्क है। असल में किसी ने कहा कहीं भूतल पर घड़ा रखा हुआ था तो वहाँ पर जो है भूतले घटा अस्ति, अब भूतल पर घड़ा नहीं है तो क्या होगा? भूतले घटो नास्ति। तो अब कोई भूतल है जिस भूतल पर कि घड़ा है नहीं, लेकिन वहाँ कोई जबरदस्ती कर रहा है कि यहाँ पर घड़ा है। अब जहाँ घड़ा है नहीं वहाँ कोई जबरदस्ती कह रहा है कि घड़ा है, तो वहाँ पर हम उसको मनाने के लिए तर्क का सहारा लेंगे। और तर्क क्या देंगे? ये देंगे कि यदि अत्र घटः अभविष्यत् तर्हि भूतलम् इव अद्रक्षत्, कि यहाँ यदि घड़ा होता तो जैसे भूतल दिखाई दे रहा है हमें उस तरह से घड़ा भी दिखाई देता। ये जो कहा गया ये तर्क है। और इस तर्क से क्या सिद्ध होता है कि चूंकि भूतल की तरह ये दिखाई नहीं देता है घड़ा, इसका मतलब है कि भूतले घटो नास्ति। ये उसका परिणाम निकलता है, फल निकलता है कि भूतले घटो नास्ति। इस तरह से जो सामने वाला व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं होता है तो उसको मनवाने के लिए हम तर्क का सहारा लेते हैं। उनको ये कहते हैं कि देखिए अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, मतलब ऐसा होता तो ऐसी आपत्ति होती, इस तरह की आपत्ति दे करके उसको हम मनवा लेते हैं। यही है तर्क। सचायम तर्क प्रमाणानाम अनुग्राह का। इस तरह का जो तर्क है वह क्या होता है? वह प्रमाण नहीं होता है बल्कि प्रमाण का अनुग्राहक होता है, माने प्रमाण का सहयोगी होता है। तर्क के द्वारा हम अनुमान प्रमाण से जो है किसी बात को सिद्ध करते हैं। तो वह तर्क प्रमाण नहीं है बल्कि प्रमाण का अनुग्राहक है। प्रमाण पर वह अनुग्रह करता है, प्रमाण का वह सहयोग करता है। तथा ही पर्वतोयम साग्नि उत अनग्नि इति संदेहानंतरम। किसी व्यक्ति को संदेह हो गया कि अयम पर्वत साग्नि उत अनग्नि, माने यह पर्वत जो है ये साग्नि है अथवा अनग्नि है, माने अग्निमान है अथवा अनग्निमान है। इस तरह का जब संदेह हो गया, संदेहानंतरम यदि कश्चिन मन्येत अनग्नि अयम इति, इस पर इस संदेह के बाद अगर कोई मान ले कि नहीं जी पर्वत जो है वो अनग्नि ही है, माने अनग्निमान ही पर्वत है, इस तरह से मानने वाले व्यक्ति को समझाने के लिए तदा तम प्रति, फिर ऐसे व्यक्ति के प्रति ये कहा जाता है कि यदि अयम अनग्नि ही अभविष्यत तदा अनग्नित्वात् अधूमोपि अभविष्यत। कहा कि देखिए भैया यदि ये अनग्नि होता पर्वत तो अनग्नि होने के कारण ये अधूम भी होता, माने धूम से रहित भी होता, इस तरह से तर्क कहा जा किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि अग्नि जो है व्यापक है, धूम जो है वह क्या है व्याप्य है, तो इस तरह से व्याप्य धर्म को स्वीकार करके व्यापक धर्म की आपत्ति जो है यहाँ दी जा रही है। वही कहा कि मैंने संदेह किस तरह का हुआ कि अयम अग्नि अयम पर्वत साग्नि निरग्नि वा अनग्नि वा, इस तरह का संदेह हुआ। उस पर किसी ने मान कहा कि नहीं यह पर्वत अनग्नि है, उस पर फिर तर्क के द्वारा उसको सिद्ध किया जाता है कि यदि अयम अनग्नि ही अभिविश्चर, ये यदि अनग्नि होता माने अग्नि से रहित होता, तो फिर अग्नि से जो रहित होता है वो अधूम भी होता है, माने धूम से रहित भी होता है, तो यह धूम से रहित भी होता। चूंकि अब देखिए इसका फल क्या निकला, चूंकि यहाँ धूम है अधूम नहीं है, इसलिए अधूम न होने के कारण ये अनग्नि भी नहीं है, ये सौधूम है, तो इसका मतलब है यह साग्नि है। तो इस तरह से तर्क का सहारा लेकर के उस व्यक्ति को मनाया जाता है। तो कहा वही कहा कि तदा तम प्रति यदि अयम अनग्नि अभविष्यत, यदि यह अनग्नि होता तदा अनग्नित्वा, तो अनग्नि होने के कारण धूम अधूम अपि अभविष्यत, यह अधूम भी हो जाता। इस तरह से अधूमवत्व का जो प्रसंजन किया जाता है, अधूमवत्व की जो आपत्ति दी जाती है, यही आपत्ति देना जो है ये तर्क कहलाता है। स एव प्रसंग तर्क इत्युच्यते, इस तरह से अनिष्ट की आपत्ति का जो प्रसंग उपस्थित खड़ा करते हैं तर्क के द्वारा, वही प्रसंग तर्क कहलाता है। अयम च अनुमानस्य विषय शोधक, यह जो तर्क होता है ये अनुमान के विषय का संशोधक होता है, विषय का संशोधन करता है, माने उसको शुद्ध बनाता है। प्रवर्तमानस्य विषयम अग्निम अनुजानाति, और यहाँ प्रवर्तमान जो विषय है अग्नि उसको अनुजानाति, अनुजानाति माने समर्थयते, प्रवर्तमान जो अग्नि विषय है उसका तर्क के द्वारा जो है वह समर्थन किया जाता है। इस तरह से तर्क स्वयं में प्रमाण नहीं है, बल्कि वह प्रमाण का समर्थक होता है, प्रमाण का सहयोगी होता है। अनग्निमत्वस्य प्रतिक्षेपात, यहाँ पर इस तर्क के द्वारा अनग्निमत्व का प्रतिक्षेप किया जाता है, प्रतिक्षेप किया जाता है माने प्रतिषेध किया जाता है। अतः अनुमानस्य भवति अनुग्राहकः, इसीलिए तर्क जो है अनुमान का अनुग्राहक होता है। अनुग्राहक होने में दो हेतु दिया, एक तो विषय शोधक होता है तर्क, दूसरा कहा कि विषय का समर्थक होता है। तो विषय समर्थक होने के कारण और विषय संशोधक होने के कारण तर्क जो होता है वह अनुमान का अनुग्राहक होता है। अत्र कश्चित आह, यहाँ पर इस प्रसंग में कोई बताते हैं कि तर्क संशय एव अंतर्भवत इति, ताकि तर्क जो है कोई अलग वस्तु नहीं है, वह संशय ही है, संशय के अंतर्गत ही अंतर्भूत होता है तर्क। ये संशय अलग और तर्क अलग नहीं मानना चाहिए, संशय मानने से ही तर्क भी मान्य हो जाता है, अलग नहीं, अलग से मानने की जरूरत नहीं है। इसका खंडन करते हैं, कहते हैं तन्ना, ताकि ये बात सही नहीं है, क्योंकि एक कोटि निश्चित विषयत्वा तर्कस्य, ताकि संशय में क्या होता है कि दो कोटि निश्चय होता है और तर्क में एक कोटि का निश्चय होता है, इस तरह से दोनों में भेद है, इसलिए तर्क को हम संशय में अंतर्भाव नहीं कर सकते। आगे निर्णय के बारे में बताते हैं कि निर्णय किसे कहते हैं, तो निर्णय अवधारण ज्ञानम, अवधारण अवधारण माने निश्चय, तो निश्चय ज्ञान को जो है निर्णय कहते हैं, और निर्णय से क्या होता है तच्चा प्रमाणानाम फलम, निर्णय जो है किसका फल है तो प्रमाण का फल है, माने प्रमाण का जब हम प्रयोग करते हैं उस प्रयोग के द्वारा हम निर्णय तक पहुंचते हैं, हमें अवधारण ज्ञान होता है, निश्चय ज्ञान होता है कि यहाँ पर ऐसा है, इदम इत्थम अस्ति, इस तरह जो ज्ञान होता है अवधारण ज्ञान वही निर्णय है। और यह निर्णय होता कैसे है, तो तच्चा प्रमाणानाम फलम, वह प्रमाणों के द्वारा होता है। अब यहाँ पर ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में बताया जाएगा, जैसे वाद, ये उसमें जो है ना वो जो प्रथम सूत्र जो था गौतम का उसमें ये सारे शब्द आए हैं, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, ये सब आए हैं, तो उनके बारे में बताते हैं कि तत्व बुभुत्सो हो कथा वाद, तत्व बुभुत्सु की जो कथा है उसको हम वाद कहते हैं। ये तीनों जो है ना, इन तीनों का उपयोग होता है शास्त्रार्थ में, वाद, जल्प और वितंडा। तो वाद जो है या इसको ये श्रेष्ठ है, इसको सब लोग जो है ना श्रद्धा के भाव से देखते हैं, लेकिन जल्प और वितंडा को जो है बहुत ही श्रद्धा से नहीं देखा जाता है, लेकिन शास्त्रार्थ के क्रम में इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए वाद का लक्षण इन्होंने बताया, तत्व बुभुत्सु हो कथा वादहा, तत्व के बुभुत्सु की जो कथा है उस कथा को हम वाद कहते हैं। यहाँ बुभुत्सु मतलब जिज्ञासु, तो तत्व का जो जिज्ञासु है उस जिज्ञासु की जो कथा है, कथा का मतलब यहाँ पर लेना है कहानी नहीं, कथा का मतलब विचार चर्चा, तो तत्व जिज्ञासु की जो विचार चर्चा है उस विचार चर्चा को हम वाद शब्द से कहते हैं। स्वच अष्ट निग्रहाणाम अधिकरणम, यह जो वाद होता है ना ये अष्ट निग्रह का अधिकरण होता है, माने इस वाद में 8 प्रकार के निग्रह का प्रयोग किया जाता है। अब ये निग्रह क्या है, तो तत्व निर्णय में जो बाधक तत्व होते हैं ना उसको निग्रह शब्द से कहा जाता है। तो तत्व के निर्णय में बाधक 8 माने गए हैं न्याय शास्त्र में, उन 8 निग्रहों का जो है तत्व निर्णय बाधकों का 8 प्रकार के जो हैं उनका इस वाद में जो है प्रयोग किया जाता है। तेज, अब वो 8 प्रकार के निग्रह कौन है, तत्व निर्णय के बाधक कौन है, तो न्यून, अधिक, अपसिद्धांता, हेत्वाभास पंचकंच इति अष्टो निग्रहाः। ये परीक्षा में भी बहुत पूछा जाता है कि 8 प्रकार के निग्रह कौन है, तो बताया न्यून नाम का निग्रह, अधिक नाम का निग्रह, अपसिद्धांत नाम का निग्रह, ये 3 हो गए, और हेत्वाभास पंचकंच, और 5 प्रकार का जो हेत्वाभास है जिसको आपने पहले पढ़ा है और आगे फिर आपको रिपीट किया जाएगा, तो ये हेत्वाभास 5 हो गए, और न्यून, अधिक, अपसिद्धांत, ये 3 हो गए, 5 3 8, ये जो 8 हैं ये निग्रह कहलाते हैं, और इन 8 निग्रहों का प्रयोग जो है बाद में किया जाता है। ये इन 8 का बाद जो होता है वो अधिकरण होता है, माने आधार होता है। अब दूसरा जो शब्द है जल्प, उसके बारे में बताते हैं कि उभय साधनवती बिजिगीसु कथा जल्पः। उभय साधनवती, दोनों प्रकार के साधन से युक्त बिजिगीसु की जो कथा है उस कथा को जल्प कहते हैं। बिजिगीसु मतलब विजय की कामना करने वाला जो है उसको हम बिजिगीसु कहते हैं। और उभय साधनवती क्या हुआ, तो दो शास्त्रार्थ में 2 होते हैं ना, पक्ष और प्रतिपक्ष, तो पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का साधन जिसमें किया जाए जिस कथा में, और वह कथा जो है विजय की कामना से की जाए, तो उस कथा का नाम जल्प होगा। तो जल्प कहलाने के लिए 2 बातों का होना जरूरी है, उसमें उभय साधन होना चाहिए, माने पक्ष और प्रतिपक्ष की के पक्ष का साधन होना चाहिए, और विजय की कामना से होना चाहिए, तो ऐसी जो कथा है वह जल्प है। सच यथा संभवम सर्व निग्रहाणाम अधिकरणम, और वह जो जल्प होता है ना उसमें यथा संभव सारे निग्रहों का उसमें प्रयोग किया जाता है। यथा संभव बताया, माने बाद में तो 8 प्रकार के निग्रह का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें यथासंभव विशेषण लगा दिया। पर पक्षे दूषिते स्वपक्ष स्थापन प्रयोगावसानश्च, और क्या होता है जल्प में, तो पर पक्षे दूषिते, दूसरे का जो पक्ष है उसको दूषित किया जाता है, उसमें दोष दिखाया जाता है, और स्वपक्ष स्थापन, और अपने पक्ष का जो है ना इसमें स्थापन करके और जल्प की समाप्ति की जाती है, वही का प्रयोग अवसानश्च, माने इस तरह से अवसान होता है। तो जल्प में क्या होता है कि हम पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की बात करेंगे, दोनों की बात करने के बाद पर पक्ष में दोष बता करके अपने पक्ष की स्थापना करेंगे, और इस तरह से जो समाप्ति होती है शास्त्रार्थ की उसी का नाम है जल्प। अब तीसरा जो है वितंडा, उस वितंडा के बारे में कहते हैं कि स्व एव स्वपक्ष स्थापना हीनो वितंडा, कहा कि ये जो पहले चर्चा हुई है कथा के बारे में, वही कथा जो है जब स्वपक्ष स्थापना से हीन होती है कथा, माने अपने पक्ष की स्थापना न हो, केवल परपक्ष का खंडन ही खंडन हो, केवल ऐसा ही अगर हो तो उसको हम वितंडा कहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा हेय है, सबसे मान्य है बाद, उसके बाद दूसरे नंबर पर जल्प और तीसरे नंबर पर वितंडा है। वितंडा जो है ना वो अच्छा अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि आप खाली दूसरे के मत का खंडन करेंगे, अपना मत बताएंगे ही नहीं, फिर उस तो वह बेकार हो गया ना। तो इसीलिए स्वपक्ष स्थापना हीन जो संवाद होता है उसका नाम होता है वितंडा। साच परपक्ष दूषण मात्र पर्यवसाना, वितंडा का जो अवसान होता है, समाप्ति जो होती है, वो केवल परपक्ष के दूषण से ही होती है। नास्य वैतंडिकस्य स्थाप्य पक्ष अस्ति, जो वैतंडिक होता है माने जो वितंडा करने वाला होता है, उस व्यक्ति का स्थाप्य पक्ष कुछ होता ही नहीं है। वो खाली ना बकवास ही करता है, कोई जो है ना सिद्धांत की बात नहीं करता। कथा तो नाना वक्तृक पूर्वोत्तर पक्ष प्रतिपादक वाक्य संदर्भा, ऐसा है कि बाद जल्प वितंडा तीनों के लक्षण में कथा शब्द का प्रयोग किया गया, ताकि इस तरह की कथा हो तो बाद, इस तरह की कथा हो तो जल्प, इस तरह की कथा हो तो वितंडा। तो कथा का नाम ही ये तीनों है। अब कथा किसको है कहते हैं, कथा का लक्षण इन्होंने बताया कि नाना वक्तृक पूर्व, माने नाना उसमें वक्ता हो, माने एक से अधिक वक्ता हो, और उन वक्ताओं के द्वारा पूर्व पक्ष का भी प्रतिपादन हो और उत्तर पक्ष का भी प्रतिपादन हो, और इस तरह से नाना वक्ताओं के द्वारा पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष का जो प्रतिपादक वाक्यों का संदर्भ है, संदर्भ माने समूह है, उन वाक्यों का वही समूह जो है उसी को हम कथा कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बाद जल्प वितंडा इत्यादि शब्दों को आज के पाठ में बताया गया। अब अगले पाठ में हेत्वाभास की चर्चा की जाएगी, जो संदर्भ आप पहले से बहुत कुछ जानते हैं, यहाँ पर पुनरावृत्ति होनी है। चलिए आज का पाठ यहीं रखते हैं।